मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम् रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिम् करोम्यस्मिन् महोत्सवे। आयाहि आय रत्नत्रय महोत्सव देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए, ओ देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमति माँ का जन्मोत्सव शरद पूर्णिमा करस घोलिए, हो शरद पूर्णिमा करस घोलिए। जब लो रत्नत्रय महोत्सव की आज 27वें दिवस का दीप प्रज्वलन करने वाले कैलाश चंद जी के लिए और रफीगंज नमोकार मंडल के सभी लोगों के लिए, सभी महिलाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपको जानना है कि ज्ञानमती माता जी देश की वह निधि हैं जो आज सर्वोच्च सर्व प्राचीन दीक्षित के रूप में हमारे समाज में अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर विराजमान हैं। आज हमारे बीच में 1600 से 1700 के लगभग दिगंबर जैन आचार्य मुनि साधु आरिकाएं सब हैं। उनमें सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी, जिनका शरद पूर्णिमा को 74 संयम महोत्सव आ रहा है, अर्थात 73 साल पहले इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग करके त्याग मार्ग में कदम रखा था। 20वीं शताब्दी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या के रूप में इन्होंने ब्राह्मी सुंदरी चंदनबाला का मार्ग प्रशस्त किया था। उन गणनीय ज्ञानमती माता जी के निमित्त से आज अनेक अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार विकास हो रहा है और मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर 108 फुट के भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए, जिनसे सब लोग परिचित हैं। सन 2016 में बृहत काय पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक एक वर्ष तक चला, जिसके माध्यम से सभी लोगों ने बहुत ही आनंद और पुण्य की प्राप्ति की। ऐसी पूज्य माता के जन्म दिवस को लक्ष्य बनाकर 108 दिन का रत्नत्रय महोत्सव हमने प्रारंभ किया है, जिसमें देव सात गुरु की उपासना के लिए समर्पित किया गया है ये रत्नत्रय महोत्सव। सर्वप्रथम हम तीर्थंकर देशना के नाम से कल्याण कल करु स्तोत्र का आपको अध्ययन कराते हैं, जिसमें एक अक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक 2400 भगवान की स्तुतियों में पूज्य माता जी ने भगवान के संपूर्ण परिचय को, उनके माता पिता, उनके जन्म स्थान, उनके पंच कल्याणक, उनके अवगाहना, उनके शरीर का वर्ण, उनका चिन्ह, ये सभी चीजें इस स्तुति में निबद्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि सुंदर सुंदर छंदों का भी ज्ञान लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसे ऐसे छंद जो बड़े ही चमत्कारी छंद हैं, और उस एक छंद छंद के भी पढ़ने मात्र से लोगों के घर में अतिशय चमत्कार उत्पन्न हो रहे हैं। उन्हीं के अंतर्गत इसमें चल रहा है सुपार्श्वनाथ भगवान का परिचय। अब बहुत सारे लोगों के पास ये कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की पुस्तकें पहुंच गई होंगी, क्योंकि ये पुनः प्रकाशित होकर के आ गई। 50 साल पूर्व इस स्तोत्र की रचना की पूज्य माता ने 141 छंद हैं पूरे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति में, यानी इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की स्वर्ण जयंती चल रही है। उसमें आप सबके पास पहुंच चुकी हैं किताबें, और जिनके पास नहीं पहुंची हैं सब लोग अपना पूरा एड्रेस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में लिखवा देंगे, और उन सबको, सभी को कोई शुल्क नहीं है, कोई पुस्तक का शुल्क नहीं, कोई डाक का शुल्क नहीं, केवल आपको अपना पता नोट कराना है, जिससे पुस्तक जिस पते पर पहुंच सके वहां पर भेजने वाले शुक्ला हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर फोन नंबर को लिख लें, उनको आप पूरा पता नोट कराएंगे तो अगले ही दिन से आपको किताबें पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। तो नंबर नोट करें, 9997617219। इस नंबर पर आप पुस्तक मंगा सकते हैं। तो अब चलते हैं, सुपार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने वाराणसी में जन्म लिया और उनके बारे में अनेक गुणों का वर्णन तो हुआ ही है, बताया गया छठे श्लोक के माध्यम से कि ज्येष्ठ शुक्ला पारस को भगवान का जन्म हुआ, भादो सुदी छठ को भगवान गर्भ में आए और ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को उन्होंने जन्म लिया। पुनः उसी ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को वे दीक्षित हुए, अर्थात दीक्षा कल्याणक उनका हुआ। और आगे बताते हैं कि केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक उनका कहाँ पर हुआ। तो चलते हैं, 10 अक्षरी छंद में अभी तक 6 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ा है, अब 10 अक्षरी छंद में ही 7वां श्लोक पढ़ते हैं। फाल्गुन कृष्ण यस्य हि षष्ठ्यां केवल भास्वान् प्रादुर्भूत्सा फाल्गुन सप्तम्याम् असितेसौ ज्ञान सुधावृत मुक्तिपति स्यात्। ये चंपक माला छंद है, चंपा के पुष्प जैसी सुगंधि घर में बिखेर देगा आपके, ऐसे चंपक माला छंद के माध्यम से पूज्य ज्ञानमती माता कहती हैं कि फाल्गुन कृष्णे षष्ठ्यां, फाल्गुन पदी षष्ठी के दिन सुपार्श्वनाथ भगवान को केवल भास्वान प्रादुर्भूत्सा उन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट किया, अर्थात केवल ज्ञान सूर्य फाल्गुन पदी छठ के दिन प्रकट हुआ, यानी केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए देवता इंद्र इस धरती पर आए और
अच्छा
वाराणसी नगरी को पवित्र किया। पुनः फाल्गुन वदी सप्तमी के दिन वे संपूर्ण कर्मों का नाश करके ज्ञान सुधा व्रत मुक्तिपति स्यात्। ज्ञान सुधा को क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान जो अरहंत अवस्था में ही प्रकट हो गया था, उसे अनंत अविनाशी बना करके और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। फाल्गुन वदी छठ केवल ज्ञान कल्याणक की तिथि और फाल्गुन वदी सप्तमी मोक्ष कल्याणक की तिथि है। आगे चलते हैं, त्वरित गति छंद, तुरंत जिसको पढ़ने से तुरंत ज्ञान प्राप्त होता है, त्वरित जिसमें देर नहीं लगती, ऐसे छंद में 10 अक्षरी छंद में आगे बताया, हरित तनुर गुण मणि भाग दिशत धनुष त्रिभुवन द्रव मद दमनो भवि सुख कृत रुद शमनस्ता शुभ वाग। ये त्वरित गति छंद और हरित तनु भगवान के शरीर का वर्ण हरित का है, हरे हरे रंग का आपके शरीर का वर्ण था, गुण मणि भाग और गुण रूपी मणियों से भरा, यानी जिनका शरीर भी अंतरंग के गुणों से एकदम इतना पामन पवित्र था, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा गया। द्विशत धनु 200 धनुष ऊंचा, माने 800 हाथ की ऊंचाई थी भगवान की, एक धनुष में 4 हाथ, तो 200 धनुष में 800 हाथ हुए। आपके शरीर का वर्ण हे सुपार्श्वनाथ भगवान हरा है, आप गुण रूपी मणियों से भरे हुए हैं, आपके शरीर की ऊंचाई 800 हाथ है और आप त्रिभुवन द्रक तीनों लोकों को आप देख रहे हैं। भगवान भी इतरागी हैं, लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा वे तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को देख रहे हैं। हम आज यहाँ बैठे हैं, अयोध्या में बैठे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपके परिणामों में क्या चल रहा है, सब कुछ भगवान अपने केवल ज्ञान रूपी चक्षु से देख रहे हैं। ऐसे भगवान के लिए कहा, मद दमनहा, आप मान का दमन करने वाले हैं। आपके अंदर कोई मान नहीं, कोई अहंकार नहीं। ये अहंकार और मान तो अधजल गगरी छलकत जाए। जिनके अंदर अज्ञानता होती है और जरा सा सरसों के बराबर ज्ञान मिल गया तो वो बेचारे मद में भूल जाते हैं। जैसे एक ऊंट सोचता है कि मेरे सामने तो चींटी कुछ भी नहीं है। तो चींटी ने कहा कि ऊंट चाचा, अगर आप पर्वत से बराबरी करके दिखा दो तो मैं जानू। ऊंट ने कहा, पर्वत तो मेरे सामने गिद्धी के बराबर रहेगा। बोले, चलो सच स्वीकार है, अगर आप पर्वत से ऊंचे निकल गए तो मैं आपकी दास्ता स्वीकार कर लूंगी। चींटी कहती है, और ऊंट ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कहता है कि ठीक है, अगर मैं पर्वत से ऊंचा नहीं रहा तो देख लेना, फिर मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लूंगा। दोनों में बात हो गई। अब जब ऊंट पर्वत के पास पहुंचता तो वहां देखता है, मैं तो चींटी से भी छोटा हूं पर्वत के सामने। बड़ा उछल उछल करके ऊंचा बनने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोगों ने आकर के उसको हंस लिया। कह रहे, ऊंट कहाँ से बराबरी करने चला है, कहाँ पहाड़ और कहाँ तेरे जैसा है पशु। तो महानुभाव, तब कहा गया कि मद किसको होता है, अध जल गगरी छलकत जाए। जिसके अंदर जरा सा ज्ञान मिला, हल्दी की गांठ आई, सोचने लगे मैं तो पंसारी बन गया। ऐसे नहीं होता। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तो पूर्ण ज्ञानी हो गए, उनके ज्ञान का कलश तो लबालब भर गया, इसलिए उनके अंदर कोई मान नहीं। ये भगवान आप मान का मर्दन करने वाले हैं। मद दमना, भावी सुख कृत, और भविजनों को सुख देने वाले हैं आप। और क्रोध शमना, आपने क्रोध को बिल्कुल शमन कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रोध जो है व्यक्ति को भस्मसात कर देता है। तो तब शुभ हुआ, और आपके क्या है, आपके वचन एकदम शुभ है। शुभ क्या है, एकदम शुद्ध है, जिनके अंदर अपवित्रता नाम की तो चीज ही नहीं है। शुभ दिव्य ध्वनि को आपकी सुन करके पूरा संसार शांति की अनुभूति करता है और सबका कल्याण हो जाता है, जो भी आपके वचन शुभ वचनों को सुन लेते हैं। ये त्वरित गति छंद के द्वारा कहा गया कि इसको पढ़ो, आपके अंदर भी तुरंत ज्ञान आएगा, शक्ति आएगी और मान का मर्दन होगा। अब आगे अनुष्टुप छंद से कहते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में आठ आठ शब्द होते हैं। विंशति लक्ष पूर्वायु सुपार्श्वा सुप्रतिष्ठ जहा पाया दीक्षा कुवंशी में जिना स्वस्तिक लांछना। हे भगवान, आपकी 20 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी। सुप्रतिष्ठ जहा, सुप्रतिष्ठ नाम के राजा आपके जहा मने जनक थे, और इक्ष्वाकुवंशी थे आप। इक्ष्वाकुवंश में आप उत्पन्न हुए। स्वस्तिक लांछना, स्वस्तिक माने साथिया, आपका लांछन माने चिन्ह है। सुपार्श्वा जिना मे पायात, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मे पायात माने मेरी रक्षा करें। यानी अंत में यही कही कहा जाता है कि भगवान आप तीनों लोकों के सरताज हैं, इसलिए आप हम सबकी रक्षा करें, हमारी आत्मा की रक्षा करें और हमें भी एक सुरक्षित स्थान पर सिद्धशिला पर विराजमान करवा दें। इस प्रकार से ये सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति स्तोत्र 10 अक्षरी अनेक छंदों में परिपूर्ण हुआ। अंत में अनुष्टुप छंद से उसका उपसंहार किया। आगे चंदा प्रभु भगवान का स्तोत्र भी आप लोग पढ़ेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। रत्नत्रय महोत्सव में आज